हरे कृष्णा। तो आप सबका श्री जगन्नाथपुरी धाम में स्वागत है। हरि बोल। श्री जगन्नाथपुरी धाम ये भगवान का चिरंतन धाम है। पहले भी आपको मैंने बताया था कि धाम और तीर्थ में क्या अंतर है। धाम उस जगह को कहते हैं जो भगवान का खुद का घर है, निज धाम यानी कि उनका घर है जहाँ पर वो चिरंतन निवास करते हैं। और तीर्थ वो है जो अपने धाम को, अपने घर को छोड़कर किसी और जगह जाकर जब लीला करते हैं तो उस जगह को तीर्थ कहते हैं। जैसे अयोध्या जी प्रभु रामचंद्र का धाम है और नासिक दंडकारण्य तीर्थ है, क्योंकि अपने घर से निकल कर वो उन्होंने बाहर जाकर दंडकारण्य में, नासिक क्षेत्र में लीला किया। तो श्री जगन्नाथपुरी ये भगवान का निज धाम है। श्री वृंदावन धाम, श्री मायापुर धाम और जगन्नाथपुरी धाम ये भगवान के चिरंतन धाम हैं और इनमें कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथपुरी, श्री वृंदावन और नवद्वीप धाम इसमें कोई, और जगन्नाथपुरी इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल भगवान अलग अलग रूप में वहाँ पर निवास करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण भगवान नवद्वीप मायापुर में निवास करते हैं और स्वयं परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, आदि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में स्वयं वो श्री वृंदावन धाम में निवास करते हैं। और जब वो जगन्नाथ बनकर आते हैं तो वो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तो जगन्नाथपुरी का थोड़ा सा महात्म्य आपको बताएंगे ताकि आपको ये भावना आपकी जो है वो तैयार रहे कि किस तरह से हमें धाम में अपने आप को रखना है, किस भावना से रहना है। और भी एक बात हमने पहले बताई थी कि पिकनिक और यात्रा में क्या अंतर है। हाँ, किसी को याद है? यस यस, बताइए सर। यात्रा, हाँ, जब हम कहीं घूमने जाते हैं और उस घूमने जाने के पश्चात अपने आप को केंद्र में रखते हैं, मेरी खुशी, मेरी योजना, मेरा आनंद, तब वो पिकनिक हो जाती है। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं और भगवान का आनंद, भगवान का संतुष्टि इसको प्राधान्य रखते हैं, इसको केंद्र में रखते हैं, मेन पर्पस, तभी वो जो घूमने का प्लानिंग है वो यात्रा हो जाती है। और जब ऐसी यात्रा हम भगवान के धाम में करते हैं तो वो बहुत ही सोने पे सुहागा। हाँ, वैसे हम अगर लोनावला भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर भी भगवान को केंद्र स्थान में रखेंगे तो वो भी यात्रा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर हम अपने बारे में सोचते हैं वो पिकनिक हो जाती है, और जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो यात्रा हो जाती है। तो मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, आप सबको अपने आप को केंद्र स्थान से हटा देना है और भगवान को केंद्र स्थान में लाना है। हमारा ट्रेनिंग कैसा है बचपन से कि सब जगह पर अपना हम लाभ सोचते हैं। मंदिर में जाएंगे तो भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान आपका गौरव हो, ऐसा नहीं कहते भगवान मेरे बच्चे को पास करो, भगवान मेरे लड़के को अच्छा बहू, अच्छा लड़का दो, मेरे लड़के का एग्ज़ाम में अच्छे मार्क मिले, लड़का फॉरेन में उनको एडमिशन मिले, बड़ी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं हम लोग और भगवान को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं कि थैंक यू माय लॉर्ड, आपने हमको हवा दिया है, पानी दिया है, भूमि दिया है और इतना सारा माहौल दिया है, इतना पोजीशन दिया है, धन दिया है, इतनी इज्जत दी है, थैंक यू वेरी मच, वो बोलने को भूल जाते हैं। क्योंकि हमेशा हमारे विचार में हम केंद्र स्थान में रहते हैं। इसलिए यही है बैठो। सबसे पहले आपके मन में आपको ये धारणा होनी चाहिए कि अगर आपकी इतनी जो मेहनत करके आपने छुट्टी निकाल के, समय निकाल के, सब कुछ छोड़ के, यहाँ पर कई लोग डॉक्टर हैं, कई लोग बिजनेसमैन हैं, कई लोग बड़े बड़े पोस्ट में, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो सब कुछ छोड़ के अपनी सारी टोपियों को उतार के आप लोग यहाँ पर आए ना। कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई एम्प्लॉई है, कोई मैनेजर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई पिताजी है, कोई माताजी है, सब कुछ छोड़ के आप यहाँ पर आए हैं। किस रूप में आए हैं? कि हम केवल अपनी एक ही पहचान लेकर यहाँ पर आए हैं। वो क्या पहचान है? ममय वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं केवल आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका अंश मात्र हूँ। और यही एक टोपी पहनकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, बाकी सारी टोपियाँ घर पे छोड़ के आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो हमको यहीं पर रूम में त्याग करना पड़ेगा कम से कम। हाँ, अपनी टोपियाँ रूम में उतार दीजिए और जब धाम में जाएंगे सब कुछ भूल जाइए कि हम लोग कौन हैं। जब हम ऐसे भाव में रहेंगे तो भगवान की पूरी कृपा जो है हम पर बरसेगी, नहीं तो सारी टोपियाँ भगवान की कृपा को रोक लेंगी, हमसे अलग कर देगी उसे। जैसे छतरी होती है, छतरी क्या करती है, बारिश से हमको अलग कर देती है, बारिश की बूंदें हमारे सर पर गिरने से मना कर देती है। वैसे ये सारी टोपियाँ जो है भगवान की कृपा के जो बरसात है उससे आपको अलग रखेगी। मतलब बरसात के बीच में आप खड़े हैं लेकिन आप पर बरसात नहीं गिर रही, ये दुर्भाग्य हो सकता है। इसलिए बैठ जाइए प्रभु, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, सिट डाउन हियर। सो आपको ध्यान रखना है कि जब हम शहर से आते हैं तो शहर का क्या वर्णन किया गया शास्त्र में, शहर या तो रजोगुण में होता है या तमोगुण में होता है। रजोगुण का मतलब क्या, बहुत सारी गतिविधि, धन चाहिए, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, पोजीशन चाहिए, इज्जत चाहिए, बहुत गतिविधियाँ होती है। और तमोगुण का मतलब क्या होता है, द्वेष, हिंसा, दूसरों की असूया करना, कंपटीशन करना, दूसरों को नीचे खींचे खींचना, दूसरों को कष्ट देना अपने के लिए, दूसरों को कष्ट देकर खुद खुशी प्राप्त करने का प्रयास करना, ये तमोगुण है, वायोलेंस। तो शहर का वातावरण जो है वो रजोगुण का बताया गया है, जहाँ पर वेश्या व्यवसाय होता है, शराब का अड्डा होता है, मांसाहार होता है, मांसों की प्राणियों की कत्तल होती है, वो तमोगुणी जगह है। और जो जंगल है, बगीचा है, नदी का किनारा है, समुद्र किनारा है, पर्वत का चोटी है, ऐसे वस्तुओं को, जगह को सत्वगुणी जगह कहा गया है। और भगवान का धाम जो है वो सत्व, रज और तमो के परे होता है, इसको दिव्य गुण कहते हैं। तो हम जिस जगह बैठे हैं वो दिव्य गुण में बैठे हैं, दिव्य गुण की जगह पर बैठे हैं। लेकिन अगर हम अपना रजगुण आके उसमें मिलाएंगे तो वो जो हमारा भाव है वो दूषित हो जाएगा। जैसे हम लोग रेडियो पे अगर हमको सिलोन सुनना है तो क्या करते हैं, लाल कांटे को घुमा घुमा कर सिलोन के नंबर पे लेके आते हैं, फिर उसको फाइन ट्यून करते हैं, फिर सिलोन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगर आपका कांटा सिलोन के नंबर के अलावा विविध भारती पर रहेगा तो आपको सुनना सिलोन है लेकिन आएगा आवाज़ विविध भारती का, तो क्या कहते हैं उसको, फाइन ट्यूनिंग। अगर आपकी चेतना को आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो बम्बई की, दिल्ली की, मद्रास की आवाज़ आएगी उसके अंदर, वहाँ पर क्या हो रहा है, शरद पवार ने क्या किया, इलेक्शन में क्या हुआ, दिल्ली में क्या बम फूटा, कराची में क्या हुआ, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग आवाज़ आपके हृदय में आ रही है क्योंकि आपका फाइन ट्यूनिंग किसी और जगह पर है। तो इसलिए आपको सब कुछ भूल जाना है। अगर धाम का पूरा लाभ जैसे कि वैसे आपको प्राप्त करना है तो आपको अपनी फाइन ट्यूनिंग भगवान जगन्नाथ से करनी होगी, तो आपके हृदय से जगन्नाथ की आवाज़ आएगी, उनके संदेश आप तक आएंगे, उनका मैसेज आप तक पहुँचेगा, आपकी चेतना, आपका धारणा, आपकी स्मरण शक्ति, स्मरण जो है उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। इसलिए सबसे पहले धाम में आने के पहले हम कहते हैं कि मन की और हृदय की बैग भरनी चाहिए, और ये मन की और हृदय की बैग भरने के कुछ साहित्य हैं, उसमें डाल दीजिए आप। और जब तक रजोगुण को आप त्याग नहीं करेंगे तब तक धाम में आकर भी आप सूखे रहेंगे, और हमारी इच्छा ये है कि आप न केवल भीगेंगे लेकिन भीग भीग कर चूर हो जाएंगे, ऐसी हमारी तमन्ना है। छोटा समय है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 5 दिन का, लेकिन 5 दिन भी बहुत होते हैं। 24 × 5 कितने होते हैं, 120 घंटे होते हैं, और 120 घंटे अगर भगवान अपने धाम में आपको प्रवेश देते हैं तो हमारी ये शुभकामना आपको है कि आप केवल शरीर से नहीं आत्मा से धाम में प्रवेश करें। ट्रेन का टिकट निकाल के, फ्लाइट का टिकट निकाल के, बस में बैठकर अपना शरीर धाम में पहुंच सकता है, लेकिन अगर आत्मा को धाम में प्रवेश देना है तो ये जो मैंने आपको बातें बताई ये सब आपको अमल में लानी पड़ेगी। हाँ, इसलिए हमारे गुरु जी बताते हैं कि अगर आपको धाम में अपनी चेतना को रखना है, आत्मा को धाम में लीन रखना है, तो आपको धाम में आकर क्या बात करनी चाहिए, मुंबई की शेयर मार्केट की करनी चाहिए, हाँ न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है वो करनी चाहिए, मुंबई में कौन सी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, हमारे ऑफिस में भी क्या हो रहा है, कौन से क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है, ये सब बातें आपको नहीं करनी है। क्योंकि मुंबई में हम बहुत दिल भर के ये बातें करते रहते हैं, है ना, 24 घंटे हमारे दिल में मुंबई में ये बातें चलती रहती है, धाम में आकर कम से कम उन बातों को त्याग करना चाहिए। ना स्वयं ऐसी बात करनी है कि हमारी चेतना धाम के चेतना से हट जाए, साथ साथ में सुनने वाले की चेतना भी धाम की चेतना से ना हटे, ऐसी बात करना है। जिस जगह की बात आप करेंगे वहीं आपका मन चला जाएगा, मतलब आपका धाम छूट गया उस समय। इसलिए आपको देखना यह है, गुरुदेव की ऐसी परम इच्छा होती है, हमेशा बताते रहते हैं कि धाम में प्रवेश करते ही धाम के जो अधिष्ठात्री देव हैं, जैसे यहाँ के देव कौन हैं, श्री जगन्नाथ भगवान, उनके लिए हमारे हृदय के अंदर के कोने में तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा की याचना करते रहनी चाहिए कि आपकी कृपा हम पर प्राप्त हो, हमें मिले। जिसको प्राप्त करने के लिए एक भिक्षुक बनकर हम यहाँ पर आए हैं, अरे आप बोले हम भिक्षु थोड़ी हैं, हम तो पैसा भरा है, लाइन से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, हम थोड़ी भिक्षुक हैं। लेकिन वो भिक्षुक नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये हम आत्मा के आध्यात्मिक भिक्षुक बनकर आए हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत डिग्रियाँ हैं, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत एसेट्स हैं, थोड़ा शांति रखने को बोलो जरा उधर। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम गरीब हैं, दीन हैं, इसलिए वो कृपा याचना करने के लिए हम यहाँ पर आए। इसलिए इन गलियों में हमको भिक्षुक बन के घूमना है, तब जाकर ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी। तो हृदय में हमेशा प्रार्थना कीजिए, जब भी आपको समय मिलेगा हाथ में माला लीजिए और भगवान के नाम को पुकारिए। मुंबई में और कई शहर में नाम जप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण उसके लिए अनुकूल नहीं होता है, रजोगुण से भरा होता है वातावरण। लेकिन ये वातावरण दिव्य गुण से भरा होने से यहाँ पर भगवान का नाम सहजता से होता है, स्वतः ही होता है भगवान का नाम। उस अनुकूल हवा के झोंके का लाभ लीजिए और जितना समय मिलेगा उसमें यहाँ वहाँ की बातें करने के बजाय भगवान के नाम को जपिए। और एक अगर आपको बहुत ज़्यादा हो गया भगवान का नाम लेके, थक गए आप, तो आपने लेक्चर में क्या सुना उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर रिवीजन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ तो कागज़ में, है ना। अगर नहीं लिखेंगे तो आप सो जाएंगे, क्योंकि जिस जगह बैठ गए आदमी, जो बहुत रजोगुण में काम करते रहते बॉम्बे में, वो अगर कहीं बैठ गए तो सबसे पहले क्या होता है, नींद आती है। इसलिए अधिक कार्य करने वाले लोगों को बैठने को कहा जाए तो वो मुश्किल है, क्योंकि बैठना जो है वो सत्वगुणी कार्य है, मतलब बैठ के जगह रहना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना बात यह है, बैठ कर जगह रहना और भगवान के संदेश पर मन एकत्र करना, केंद्रित करना, ये सत्वगुण का लक्षण है। तो ये कठिन काम है, तपस्या है यही, कि भगवान के विचार पर मन एकत्र करना, केंद्रित करना, ये धाम की तपस्या है। इसलिए हम आपको विनती करेंगे, हर रोज कथा में आते समय आपको ये पेपर साथ में लाना है और जप माला साथ में लानी है। यदा कदाचित कोई 10-15 मिनट यहाँ वहाँ लेट होता है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, माला निकालिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुकारते रहिए पुकारते रहिए। जब पुकारेंगे तो देखेंगे आपको, जब तक नहीं पुकारेंगे तब तक नहीं देखेंगे। जब तक पुकार आपकी तीव्र नहीं होगी तब तक तीव्रता से आपको नहीं देखेंगे। जब तक पुकार में कशिश नहीं होगी, हृदय से आवाज़ नहीं आएगी, तब तक वो नहीं सुनेंगे। और वो सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, वो केवल आपकी आवाज़ और पुकार सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए हम बात बात में बीच बीच में कहते रहते हैं पुकारो पुकारो, क्योंकि हमारे मन में बहुत संकोच होता है, बहुत क्या कहते हैं उसको, आलस्य भी होता है तमोगुण कलयुग के प्रभाव से। सब संकोच छोड़ दीजिए, कोई हम बड़े आदमी छोटे आदमी नहीं है, कोई पुरुष स्त्री बड़े सुंदर करीब काला गोरा पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई नहीं है, हम लोग केवल भगवान के अंश हैं, ये हमारी एक पहचान है। और बाकी सब संकोचों को छोड़ दीजिए, तभी जाकर भगवान की कृपा आप पर प्राप्त हो सकती है। अगर संकोच करेंगे, होंठ हिलने में कष्ट होगा, गले को कष्ट देने में कष्ट होगा, तो फिर भगवान नहीं प्राप्त होंगे, और वैसे ही हाथ हिलाते हम खाली हाथ लौट जाएंगे। तो हमारी ये भगवान से सब प्रार्थना है हृदय से, कि आप सबकी झोली वो कृपा से भर दें। उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर 5 ml का कप लेकर आएंगे और 1 L की कृपा आपको देनी है तो क्या होगा, 95 ml जो है बाहर फैल जाएगा, केवल 5 ml अंदर रहेगा, क्योंकि आपका कप जो है वो केवल 5 ml का है। अगर आपको ज़्यादा कृपा चाहिए तो बड़ा पात्र लेकर आइए, तो ही बड़ा मात्रा में कृपा आप समेट सकते हैं। इसलिए धाम की आने की तैयारी होना बहुत आवश्यक है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको धाम में किस प्रकार से अपने मनोचेतना को रखना है। धाम में हम केवल आते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की दृष्टि हम पर पड़े इस भावना से, और हम भगवान को ताके उनका दर्शन करें, इसलिए हम आते हैं। विशेष रूप से जगन्नाथपुरी धाम जो है वो केवल नेत्रों का धाम है, केवल जगन्नाथ भगवान को देखने का धाम है। उसकी कथा में बताऊंगा आपको, बाद में आपको समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। आँखों का और नेत्रों का जो परफेक्शन है, परिपूर्णता जो है, वो जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने का है। और हमें जगन्नाथ भगवान का दर्शन होने के ज़्यादा उनकी दृष्टि हम पर पड़े, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ में धाम में प्रवेश कैसे करना चाहिए, बहुत सारी बातें बता दी, और कुछ बातें हैं लिख सकते हैं आप। धाम में व्यक्ति केवल सेवा के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। इस विश्व में, इस जीवन में अगर कोई संतुष्टि है, कोई समाधान है, तो वो केवल सेवा का है। देर इज़ नो अदर सेटिस्फैक्शन दैन सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्विस। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कल रात को सोए भी नहीं है, 2 बजे गए किसी आपको लेने के लिए और वापस दोपहर को गए। तो जो सबसे अधिक सेवा करेगा, सबसे अधिक थक जाएगा सेवा करते करते, मग्न रहेगा, एब्सॉर्ब रहेगा, वो सबसे खुश रहेगा। क्योंकि इस विश्व में मनुष्य जीवन के लिए सेवा के सिवा और कोई बड़ा आनंद नहीं है, सेवा लेने का नहीं, सेवा देने का। दूसरा आनंद यह है धाम में प्रवेश करने का, सतत प्रार्थना, मन में सतत रूप में प्रार्थना करना, ये और एक धाम में प्रवेश करने का रहस्य है। तीसरा रहस्य यह है ऋणी भावना, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में उसको। इफ़ यू आर ग्रेटफुल दैट व्हाट यू हैव रिसीव्ड, यू विल बी मोस्ट ब्लिसफुल एंड यू विल रिसीव कृष्णा मर्सी। अगर आपको जो भी प्राप्त हुआ है उसमें आप संतुष्ट हैं, आपके पद से, आपके धन से, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके प्रॉपर्टी से, आपके शरीर से, स्वास्थ्य से, डिग्री से, काम से, परिवार से, बच्चों से, जो भी आपको भगवान ने दिया, अगर उसमें आप संतुष्ट हैं और उनके ऋणी हैं, तो आप सही रूप में भगवान के टच में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, हमारी एक लंबी लिस्ट है अपेक्षाओं की, जितनी लंबी अपेक्षाएँ हैं हमारी उतनी असंतुष्टि ज़्यादा होती है, जितनी अपेक्षा की लिस्ट कम होती है उतनी संतुष्टि ज़्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पर हम ठाकुर जी के घर में आए हैं, समझो अगर हम आपके घर में मेहमान बन के आते हैं 5 दिन के लिए, तो जहाँ पर आप सुलाएंगे वहाँ पर सो जाएंगे, जो भी रसोई बनाएंगे उसको खाएंगे, और AC लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सही ठीक है, क्या करेंगे, हाँ हवा चलेगी तो ठीक है, राउंड फोर में तो हवा नहीं आएगी, पाँचे वाले रखेंगे तो हवा आएगी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता आपके घर पर, क्या माता जी आपने लड्डू ही खिलाया नहीं, खाली आलू का सब्जी खिलाया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपके अधीन हूँ। जब आपके घर में आया हूँ, आपका मेहमान ज़रूर हूँ, लेकिन आपके अधीन रहता हूँ, जो आप खिलाएंगे, जहाँ सुलाएंगे, जहाँ रखेंगे, वैसे मुझे रहना पड़ेगा। वैसे हम जगन्नाथ जी के घर पर आए हैं, बहुत सारी योजना हमने बनाई है, उनको प्रपोजल दिया है कि हमको ये देखने की इच्छा है, यहाँ यहाँ जाने की इच्छा है, लेकिन कहाँ कहाँ भेजना है आपको, क्या क्या सुनाना है और कहाँ कहाँ दर्शन कराना है, ये उनके हाथ में है। इसलिए मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम प्रपोज कल करेंगे, योजना की सफलता वो करेंगे। इसलिए जितने प्रोग्राम बनाए हैं वो सब उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, लेकिन ये जानकर हमको संतुष्ट रहना चाहिए कि हम भगवान के अधीन हैं, वो हमको जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। तो ये बात हुई ऋणी भावना की। उसमें शायद किसी को सब्जी अच्छी लगे नहीं लगे, हाँ जगन्नाथ का प्रसाद तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर इतना आनंद है, अभी आपको शाम को आने वाला है, हाँ ऐसे कहा गया है कि वृंदावन में जाएंगे तो आपको वृंदावन के रज में लोटपोट होकर कृपा याचना करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण नंगे पैर घूमते हैं। मायापुर में जाएंगे तो हरिनाम संकीर्तन करना पड़ेगा आपको। जगन्नाथपुरी में उतना भी कष्ट नहीं है, जगन्नाथपुरी में केवल जगन्नाथ का प्रसाद खाओ, उसी में परिपूर्णता है। लेकिन कैसे खाना है उसको, अरे ये सब्जी अच्छी नहीं है, ये सब्जी अच्छी, ऐसा कहेंगे तो फिर वो लाभ नहीं होगा। ये प्रसाद जगन्नाथ ने आस्वादन किया है और मुझे पाने के लिए प्राप्त हुआ है, यही देखकर खाना है उसको। अरे ठंडा है, अरे गर्म नहीं है, अरे मीठा है, अरे दाल में नमक कैसे, अरे दाल में मीठा डाल दिया है, हाँ इसमें दाल सूखी कैसी है, अरे ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर वो प्रसाद का लाभ नहीं होगा। लेकिन जो प्रसाद का सही रूप में आस्वादन करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, खाएंगे नहीं उसको, पाएंगे, ग्रहण करेंगे धन्यवाद की भावना से, हर एक आइटम का स्वाद लेते हुए जगन्नाथ की याद करेंगे, उस प्रकार से केवल प्रसाद पाने मात्र से ही हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। और दूसरी बात, जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आँखों को देखते रहना बस। हाँ, उन्होंने आँखें बड़ी बड़ी क्यों की है, सभी भक्तों को वो बड़े प्रेम से निहार सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बड़ी बड़ी आँखें यहाँ पर प्रस्तुत की आपके लिए, इसलिए उनको कहा गया कमल नयन, जगन्नाथ जी कमल नयन। तो इस तरह से भगवान के घर में वो जैसे रखेंगे वैसे धन्यवाद देकर हमको रहना है और उनको थैंक यू देना है। और चौथी बात है नम्रता। नम्रता का मतलब क्या है, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इसलिए मुझे सबसे पीछे रहना है, सब जहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे सबसे आगे हैं, सब भक्ति में मेरे से आगे हैं, ऐसे सबकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अगर बस में अगर जाने का सवाल आता है सबको पहले मैं बिठाऊँगा और अगर जगह बची तो मैं बैठ जाऊँगा, ना फ्रंट सीट हो या लास्ट सीट हो। हाँ, अगर जगन्नाथ दर्शन में जाना है तो जो भी सबको आगे करूँगा, सबसे पीछे नहीं रहूँगा। प्रसाद का समय आया तो सबको सेवा करने का प्रयास मैं करूँगा। अपने आप को सबसे नीचा मानकर सबको आगे करना, सबको आगे लाभ देने का प्रयास करना, इसको नम्रता कहते हैं। तृणादपि सुनिश्चेना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक तृण से भी हमको नम्र बनना चाहिए। बहुत कठिन बात है ये। हाँ, तृण मतलब कैसा होता है, आप लात मारेंगे, कुत्ता बिल्ली अपना शौच करेंगे, कुछ भी होगा तो तृण का पत्ता कुछ नहीं बोलता है। गर्मी सर्दी होगी कुचला जाएगा उसको, तृण का पत्ता कुछ प्रतिरोध नहीं करता है उसका। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उससे भी अधिक आपको नम्र बनना है, तभी जाकर भगवान की कृपा हम पर हो सकती है। तो चौथा मार्ग हुआ नम्रता का। ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन कुछ मेन आइटम आपको हमने बता दिए। ठीक है, जगन्नाथ भगवान को स्मरण करने में जो भी आपको अनुकूल रहेगा उसी बातों को करना है, और दूसरों को भी जगन्नाथ भगवान की याद आती रहे वैसे ही अनुकूल बातों को आपको करते रहना है। साथ में धाम में जब हम आते हैं तो केवल भगवान के बारे में श्रवण करने में, भगवान के बारे में कीर्तन करने में और भगवान को स्मरण करने में ही हम आते हैं यहाँ पर, वही उद्देश्य से आते हैं, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। हमको आदत नहीं ऐसे दिन भर करने की ना, लेकिन दिन भर भी हम लोग श्रवण कीर्तन और स्मरण ही करते रहते हैं। आपको याद नहीं होगा शायद, पता नहीं होगा, जो बिजनेस हम करते हैं उसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, सुबह उठते हैं ब्रश करते समय आज किसका मीटिंग है, आज कौन सा डील करना है, कौन से कस्टमर से मिलना है, कैसे बिजनेस बढ़ाना है, सोच रहे हैं हम लोग। तो चिंतन सब लोग करते हैं लेकिन अपने विषय का करते हैं। धाम में आकर हमको चिंतन भगवान का करना है, भगवान के विषय में बोलना है, भगवान के विषय में सुनना है और उन्हीं को याद करना है। सुबह उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, स्नान करते हुए, ब्रश करते हुए, सब कुछ विधि करते हुए हमको उन्हीं को याद करना है। इसलिए हम अपने प्रिय घर को और अपने प्रिय घर की सारी सुविधाओं को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, है ना। और यहाँ का टेम्परेचर और घर का टेम्परेचर अलग है, घर में बहुत लोगों के एसी होगा, यहाँ पर शायद रूम में होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी हो ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशयेत, मन को कृष्ण पर स्थिर रखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, यही तपस्या है। तपस्या मतलब ये नहीं कि हम जंगल में जाके परिवार को छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, संन्यास लेकर वहाँ पर जंगल में तपस्या करें, हिमालय की गुफा में तपस्या करें, वो तपस्या नहीं है। तपस्या यही है जहाँ पर है वहीं रहकर अपना मन कृष्ण पर केंद्रित रखना, ये सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कठिन बात भी है। उसके बाद में हमको जानना ये ज़रूरी है कि भगवान का धाम जो है वो भगवान का शरीर है। भगवान बलराम जी जो है वो इतने भगवान के बड़े भक्त हैं, स्वयं भगवान है, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक परम पुरुषोत्तम आदि पुरुषोत्तम भगवान है और एक उनके विस्तार है, सेवक भगवान है। और सेवक कैसे हैं, वो अपने शरीर का विस्तार करते हैं, और सबसे पहला विस्तार जो है वो धाम बनाते हैं, भगवान का रहने के लिए धाम बना देते हैं। उस धाम के अंदर जो उनके वस्त्र हैं, जो उनका सिंहासन है, जो उनके अलंकार है, जो उनका मुकुट है, जो उनके पीताम्बर है, जो भी उन खाने की थाली है, उनका बिस्तर है, उनके गद्दा है, तकिया है, राजसभा है उनकी, सब कुछ वो बन जाते हैं स्वयं, भगवान धारण करते हैं, ऐसी हर एक वस्तु वो स्वयं बन जाती है। इसलिए भगवान के धाम में जब हम आते हैं, अभी तो हम आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जैसे ही आते हैं ट्रेन से या बस से या हवाई जहाज से उतरते हैं, सबसे पहले इस भूमि को वंदन करना चाहिए। जो भूमि हमको सर पे रखनी चाहिए उस पर हम चल रहे हैं, चलना पड़ रहा है, क्या करेंगे, हम तो हवा में उड़ नहीं सकते, इसलिए हमको बार बार इस भूमि को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का साक्षात शरीर है, जो धाम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। और ये प्रलय में नष्ट नहीं होता है, जब मिनी प्रलय होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में, और जब ब्रह्मा जी के 100 साल होने के बाद में जो महाप्रलय होता है, दोनों में ये धाम नष्ट नहीं होता है। त्रिगुणों का प्रभाव इस पर नहीं होता है, यमराज ब्रह्मा जी और देवताओं का प्रभाव इस पर नहीं होता है। आगे बताएं कहानी आपको कैसे नहीं है इनका प्रभाव इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान राज करते हैं और भगवान का नियंत्रण, भगवान की इच्छा और उनका नियम यहाँ पर चलता है। किसी भी देवता का जो दुय्यम नियम है, सेकेंडरी रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल हियर। इसलिए हमको देखना यह है कि धाम को हम सतत प्रणाम करते रहें, और धाम का जो सार है वो हमको सबको एंड में यहाँ से स्वीकार करके हृदय के पेटी में बंद करके बम्बई ले जाना है, तब जाकर आपकी धाम की यात्रा सफल होगी। क्योंकि जब तक आपके हृदय में धाम प्रवेश नहीं करेगा स्मरण के रूप में, चिंतन के रूप में, तब तक आपकी धाम की यात्रा सफल नहीं होगी। आपको ट्रेन में बम्बई में जाने के पश्चात धाम की याद आती रहनी चाहिए कि धाम ने हमें क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या दर्शन किया, क्या क्या सुना, क्या महिमा सुना धाम के बारे में, कैसे प्रसाद का आस्वादन किया, वो सबको याद करने का अभी आपको प्रयास करना है। अगर आप यहाँ की सब्जी खा रहे हैं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद, उस स्वाद को याद करने का प्रयास करना है, ताकि बम्बई जाके उसकी, दिल्ली जाके उसकी याद आए आपको, तो ही आपकी धाम की यात्रा सफल कह सकते हैं। और वो जो धाम का सार है, वो धाम के बारे में जो महिमा की कथाएँ हैं उसके द्वारा प्रकट होगा। गुरु जी की कृपा के माध्यम से, स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की कृपा के माध्यम से हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे, उनकी कृपा से, उनकी याचना करके कुछ शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। उसी में जो गुरुजनों ने कहा है, उसकी वाणियों को सुनकर हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, उन्हीं के वाणी को दोहराएंगे, उन्हीं के वाणी के माध्यम से धाम का सार प्रकट होगा। और वो कब प्रकट होगा? कथा में। इसलिए आपको कथा में जागरूक रहना है। कथा में सोएंगे तो सार गया, बाकी सब याद आएगा आपको, कुर्सी कैसी थी और रूम कैसा था वो सब याद आएगा, क्योंकि तब आप जगे रहेंगे ना, तो आपको जगे रहना तब है कथा के अंदर। इसलिए कथा में जगा रहने के लिए आपका रूटीन कैसे करना है, तुरंत जाके रूम में सोना है सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धाम में कथा होती है तब जगे रहना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको किसी कारण नींद आती है, आपके बाजू वाले को बोल के रखिए कि मेरी आँख झपकी तो मुझे जगा देना, क्योंकि जब धाम में सार मेरे पास आ रहा है तो अगर निद्रस्त रहूँगा तो मैं भूल जाऊँगा उसको। इसलिए अगर आपको कोई जगाता है तो बुरा नहीं मानना, अरे अपने आप को क्या समझता है, मैं थोड़ी सोया हूँ, मैं तो आँख बंद करके सुन रहा हूँ थोड़ा जरा बालक को संभालना जरा प्लीज़। तो इसलिए ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी कभी अपना जो बॉम्बे का लाइफ है, दिल्ली का लाइफ है, ऐसा कंडीशनिंग होता है उसका कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, हमको आदत नहीं सुनने की, प्रवचन सुनने की, घंटों घंटों बैठने की। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा एक जगह बैठने का, चाहे कुर्सी में बैठ जाओ किसी को तकलीफ है तो, लेकिन जगे रहो, जागते रहो। हाँ, और जो आप सुन रहे हैं और आपको जगना भी है तो आपको बड़े नम्र भावना से एक नोटबुक लेके आना पड़ेगा, पेन भी लाना पड़ेगा, और जो हम कह रहे हैं उसको अच्छा लगा आपको तो आप लिखिए उसको। हाँ, तो आप लिखेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा पहले तो क्या लिखना है, और लिखेंगे तो कुछ दोबारा याद आएगा, और बाद में रूम में जाके खोलेंगे तो भी आपको याद आ सकता है कि क्या क्या सुना हमने आज। हाँ, तो आप लिखिए उसको। मैंने भी बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं, सबसे पहले मैंने किया है, इसलिए आपको कहने को करने को विनती कर रहा हूँ। आगे की बात है धामवासी, जो धाम में रहते हैं, अनेक प्रकार के धामवासी होते हैं। एक प्रकार के धामवासी वो हैं जो धाम में ही जन्म लेते हैं, जिनके माता पिता भी धामवासी थे और धामवासी के गर्भ में उनका जन्म हुआ है। दूसरे धामवासी वो है जो बाहर उनका जन्म हुआ है लेकिन वो यहाँ पर आके रहने लगे हैं। ऐसे कई भक्त हैं हमारे इस्कॉन के भी हैं जो वृंदावन में, मायापुर में जगह लेकर घर बनाकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। परदेसी लोग भी सब कुछ अपना वातावरण, वहाँ का कल्चर छोड़ के यहाँ के कल्चर में लीन हो जाते हैं, वो भी धामवासी है। और एक धामवासी होता है जो बम्बई, दिल्ली, मद्रास शहर में रहता है लेकिन हमेशा धाम की चिंतन में रहता है, वो भी धामवासी, क्योंकि वो हृदय से धाम में ही है, उसका शरीर केवल किसी व्यवहार के लिए शहर में रह रहा है, लेकिन इनका मन जो है, उनकी चेतना जो है, हमेशा धाम में लीन रहती है। आपको तय करना है कि आपको कौन सा धामवासी बनना है। तीसरा जो प्रकार है वो आप आसानी से कर सकते हैं, और वो बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में रहकर धाम की चेतना और विचार और स्मरण बना रहे, अगर आपको ऐसी इच्छा है, तो जितने समय, जितना क्षण, जितने घंटे आप यहाँ पर है, आपको उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। उतना स्पंज, उतना स्पंज, वो जितना पानी खींच लेगा उतना ही उसके पास में रहेगा ना, तो बाद में दबाएंगे तो पानी निकलेगा जितना उसने खींच लिया है। वैसे अपने आत्मा के स्तर पर आपने जितना ग्रहण कर लिया है वही आपके साथ जाएगा, जो आपने ग्रहण नहीं किया है, आपके ऊपर से चला गया है, वो आपके अंदर प्रवेश नहीं होगा, ना आपको उसकी याद आएगी बम्बई में। इसलिए आप तीसरे प्रकार के धामवासी बनने की चेतना कर, चेष्टा करना जरूर, वो आपके लिए मुमकिन है। हो सकता है आपका जन्म कहीं और हो गया हो, जन्म से आप धामवासी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी चेतना भगवान पर स्थित है वही सच्चा धामवासी है। और यहाँ जन्म भी हो गया है, बाहर से आके रह भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका में शेयर मार्केट में क्या हो रहा है वो सोच रहे हैं, तो आप अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ पर नहीं रह रहे, तो उससे क्या लाभ है। बेहतर यह है कि आप जहाँ रहो वहीं रहो, लेकिन वहाँ पर भगवान के बारे में चिंतन करो। और रही बात यहाँ के धामवासियों की, ऐसे कहा गया है स्वयं कृष्ण भगवान और लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, पद्म पुराण में श्री पुरुषोत्तम धाम महात्म्य खंड में वो बता रहे हैं कि यहाँ के जो वासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनको सारे देवता, ब्रह्मा से लेकर बाकी देवता सब जो है 33 करोड़, वो चतुर्भुज रूप में देखते हैं। मतलब क्या, जीवन मुक्त अवस्था में देखते हैं, मोक्ष प्राप्त अवस्था में देखते हैं, हमेशा मनुष्य ही नहीं, लेकिन जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, बंदर है, जो भी जीव यहाँ पर रहते हैं, वो सभी जीव जीवन मुक्त हैं, क्योंकि जो धाम में निवास करता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता, बार लौट के वहाँ पर माता के गर्भ में या शरीर को प्राप्त करने में वापस लौट के नहीं आता। इसलिए इस धाम में रहते हुए कोई आपको बड़ा अच्छा बुरा अनुभव आ जाए, उसको मन में मत लेना। धाम के वासी जो करते हैं उनका हिसाब किताब भगवान स्वयं करते हैं, हमको उनका अपराध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बाहर से आएंगे और उनका अपराध करेंगे, जरूर भगवान नोट करेंगे उसको, हाँ, क्योंकि आप बाहर से आए हो, मेरे अंदर के लोगों का अपराध करते हो, ठीक है, मैं आपको दंड दूंगा उसका, क्योंकि भगवान अपने धाम वासियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उनको अपने धाम में जन्म देते हैं। उनके पुण्य पर, पूर्व पुण्यों को देखते हुए, उनके योग्यताओं को देखते हुए, उनके गुण को देखते हुए ही वो धाम में जन्म ले सकता है, वो बहुत बड़ी दिव्य बात है। हम उतने योग्य नहीं हैं, इसलिए हमको धाम वासियों, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ऑटो रिक्शा वाला हो, और के पांडा हो, और किसी प्रकार का व्यक्ति हो जो आपको बाहरी रूप से अपराध करते हुए दिखाई पड़ता हो आपकी तरफ से, डोंट गेट इन्वॉल्व। ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का अपराध नहीं करना है, अपना अपराध हो जाए फिर चलेगा, लेकिन उनको अपराध नहीं करना है, क्योंकि धाम वासियों को अपराध भगवान बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है भगवान से जाकर क्या मांगना है, तो तुरंत आपके मन में एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, अरे मुझे ये मांगना है, लेकिन एक बड़ी तपस्या आपको करनी पड़ेगी। कोई भी भौतिक चीज़ भगवान से नहीं मांगना है। भौतिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे मृत्यु के साथ यही छोड़नी पड़ेगी, ऐसी कोई वस्तु को नहीं मांगना, इज दैट राइट। जो आपको यही छोड़ के जाना है उसको मांग के फ़ायदा क्या है, तो आपके साथ नहीं जाने वाला है। जो आपके साथ जा सकता है उस वस्तु को मांगो, और वस्तु क्या है, भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान के भक्तों की, भगवान की सेवा, भगवान के विषय में चिंतनशील प्रवृत्ति, भगवान की सेवा की प्रवृत्ति, आलस्य नष्ट हो, आपके विषय में आसक्ति बनी रहे, हमारा ध्यान जो है आप पर ही बना रहे, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, आपको हम संतुष्ट कर सके, सम सिद्धिर हरितोषणम, ये सब मांगना उनसे, क्योंकि ये सब चीज़ आपके साथ जाएगा। बोले जवान अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में, किसी भी अवस्था में हम गुजर जाएंगे, फिर भी ये सारा धन जो है हमारे साथ जाएगा। बाकी सारी जो वस्तुएँ शरीर के साथ बंधी हुई है, वो शरीर के साथ यहीं पर छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान के साथ जाकर हाथ जोड़कर केवल मुक्ति यही मांग करना कि आपकी कृपा हमको प्राप्त हो, आपकी सेवा में हम बने रहें। चाहे आप मोक्ष दे दो, चाहे आप बार बार बुलाओ यहाँ पर जन्म लेने के लिए, जहाँ पर भी रखेंगे, नरक में, स्वर्ग में, इधर इस जन्म में इतना समय बचा है, जितना भी समय है, कहीं आगे भेजेंगे, पहले कहाँ से भेजा हुआ है, सब जगह पर आपको यही प्रार्थना करनी है कि भगवान जहाँ भी रखे आपके चरणों में रखो, आपकी सेवा में रखो। हाँ, ये न के न प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, इसकी मांग आप जरूर कर सकते हैं। जगन्नाथ जी ऐसी मांगों को जल्दी लेते हैं प्रायोरिटी के अंदर। हाँ, वो होता ना प्रार्थना में, आपके घर में कोई आएगा समझो, आप बोलेंगे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जो वो मांगने से आपको अच्छा लगे वो इच्छा आप पहले पूरी कर देते हैं, है ना। आप में से बहुत लोग मैनेजर्स भी होंगे, आपके सबॉर्डिनेट आपके पास आपको कुछ बोलता है जो आपके मन में होगा उससे अनुकूल अगर कुछ होगा तुरंत उसको आप पूरा कर देते हैं, बाकी को बोलते हैं कल आ जाओ कल देखेंगे उसको। तो भगवान के लिए अनुकूल जो है वैसे ही मांग करना, आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। ये सब सीक्रेट है भगवान के ध्यान को आकर्षित करने का। हाँ, और एक भगवान का ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, वो ये है कि स्वयं के लिए प्रार्थना करते हुए न करते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जो आपके साथ नहीं आए हुए हैं, जो आपके प्रियजन हैं आप्तजन हैं, उनके लिए प्रार्थना करना कि उनको भी आप भक्ति दे दें, उनको भी चरणों में स्थान दे दें। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भगवान ने ऐसा कहा है कि जब आप उनकी प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं, लेकिन आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो पहले सुनते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए प्रार्थना करना मतलब अपने आप को बाजू में रखना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए कार्य करना भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान स्वयं परमार्थी हैं, हमेशा अपने भक्तों के बारे में, उनसे जुदा हुए जितने जीव हैं उनके कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। ये भगवान का मिशन है, इसलिए आप सब लोगों को मैं बार बार ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी इस यात्रा में आने को तय किया है, और हम आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सबकी यात्रा सही रूप में आध्यात्मिक रूप में सफल हो, भगवान की कृपा दृष्टि आप पर पड़े और आपके हृदय में परिवर्तन आ जाए। यात्रा का मतलब क्या है, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, वैसे के वैसे मुंबई लौटे और दोबारा वैसे के वैसे मुंबई में मग्न हो गए तो फिर यात्रा का लाभ क्या है, नो यूज़। यात्रा के कृपा को प्राप्त करने के बाद में हमारी भक्ति में, भावना में, स्वभाव में, हमारे गुणों में अंतर आना चाहिए, तभी जाकर यात्रा में आने के जैसा लाभ आप कह सकते हो। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि हमने भी जगन्नाथपुरी किया है, अभी हमारा बद्रीनाथ बाकी है, हमने रामेश्वर भी कर चुके हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना मराठी में, हिंदी में सब लोग कहते हैं। अभी हम लोग हमारे घर में हमेशा पूछते हैं हमें, अरे कितनी बार जगन्नाथपुर जाते हैं आप, बार बार क्यों जाते हो, एक बार काफ़ी है, हमारा भी हो गया है, वापस नहीं गए हम लोग वहाँ पर। तो हमको वहाँ पर बोलते ना, एक खंभे को हाथ लगा के नहीं आना है, भुजा करके नहीं आना है, हमको उस धाम को अपने हृदय में भरना है। इसलिए एक बार, तीन बार, पंद्रह बार जाते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार हमको अधिक अधिक उसकी कृपा को भरना है, ताकि जहाँ भी हम रहे धाम में रहें, इसलिए हम यात्रा करते हैं। वैसे हम कम से कम 5-6-7 और अभी यहाँ पर आ चुके हैं, वृंदावन में 50 बार जा चुके हैं, मायापुर में 50 बार जा चुके हैं, लेकिन हर बार जाते हैं उन्हीं जगह पर बैठते हैं, उसी कथा को दोबारा सुनते हैं, वहीं पर वही कीर्तन करते हैं, वही मंत्र है, वही भगवान है, सब कुछ वही है, लेकिन हर बार नवयौवन है उसके अंदर, हर बार नयापन है। हम बोलेंगे अरे क्या, उधर तो योगपीठ में आप गए ना, कितने बार जा चुके हैं, वही कथा है, कोई दही कथा नहीं, वहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है उधर पेड़ के नीचे, बस वही सुनना है जाके। लेकिन वो बार बार श्रवण करने से हृदय की शुद्धि होती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, अनर्थों का नाश होता है, प्रेम की ज्योति जलती है हृदय से, जो स्वाभाविकता हृदय के अंदर है वो बुझ चुकी है, वो पुनः जागृत होती है। इसलिए बार बार हमको साल में कम से कम एक बार सब कुछ कर्तव्यों को छोड़कर, परिवार सहित सब कुछ छोड़कर धाम में जाना चाहिए, वहाँ की असुविधाओं को स्वीकार करना चाहिए, और वहाँ की असुविधाओं को स्वीकार करते हुए भगवान के चिंतन में रत होने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप हमको विनती करते हैं, हर साल आइए, हाँ हर साल अलग जगह जगह आइए, भगवान की विविध लीलाओं को सुनिए, भगवान के विविध रूपों का दर्शन कीजिए, भगवान के विविध रूपों की लीलाओं का श्रवण कीजिए। ये जीवन में धन्यता है, ये हमारे जीवन का मेन बिजनेस है, लेकिन हम लोग इसको लास्ट बिजनेस रखते हैं, बाकी सारे प्रायोरिटीज पहले पूरी करते हैं, और जिसके लिए आए हैं वो लास्ट में करते हैं। भले बड़े हो जाएंगे, शरीर थक जाएगा, जोड़े दुखने लगेंगी, तकलीफ हो जाएगी हृदय की, तो राइट टाइम है उनको पुकारने का। लेकिन जब शरीर अस्वस्थ है तो सारी चेतना और चिंतन शरीर का होता है, अरे यहाँ दुख रहा है, अरे वहाँ दुख रहा है, अरे इधर में ये शुगर में बढ़ गया, अभी दर्द हो रहा है, शरीर से बाहर चेतना कैसे आएगी तभी उस समय, तो शरीर को दर्द और पीड़ा और कष्ट है। शरीर के बाहर अगर चेतना को खींचना है तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाकर मन के शरीर के बाहर की जो वस्तु है परम भगवान, उनका चिंतन हम कर सकते हैं। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, जितनी यात्रा करना है करते रहना, कम से कम एक बार शरीर साल में एक बार आपको सब कुछ छोड़ के यात्रा में आना ही चाहिए, ताकि भगवान से आप 100% कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ सकते हैं। एक विचार रख के मन में, वही मनुष्य जीवन की सफलता है, वरना मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। ना धन कमाने का उद्देश्य है, ना विद्या प्राप्त करने का है, ना अच्छे पद को प्राप्त करने का है, ना मोक्ष प्राप्त करने का जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करना ये मोक्ष से भी ऊपर की प्राप्ति है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हमको मिला है। और यही भगवान भी चाहते हैं कि मुझसे बिछड़े हुए जीव मेरे धाम में फिर लौट कर मेरे पास आए, मेरे साथ परिवार के रूप में रहे और दिव्य आनंद का अनुभूति करते रहे, ये उनकी इच्छा है। इसलिए वो बार बार अलग अलग रूप लेकर धाम में आते हैं, अलग धाम में अलग लीलाएँ करते हैं, ताकि हम जैसों का जो हृदय है वो उनकी ओर आकर्षित हो जाए। इसलिए उन्होंने इतना सब रूपों में, अनंत रूपों में, अनंत लीलाओं का यहाँ पर प्रकट किया है, ताकि हमें भी चाहिए ना वैरायटी। द्वारका में एक लीला करते हैं, यहाँ पर दूसरी लीला करते हैं, वृंदावन में खेलते हैं, हाँ चार धाम में भगवान चार लीला करते हैं। किसी को पता है बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण ऋषि भर के तपस्या करते हैं, फिर जब राजपाठ करने का समय आता है तो द्वारका में जाते हैं, वहाँ पर राजनीति करते हैं द्वारकाधीश के रूप में, प्रॉपर पॉलिटिक्स, राजनीति, राजपाठ चलाते हैं। और जब उनको शयन करने का मूड आता है तो कहाँ जाते हैं, वो श्रीरंगम में जाके शयन करते हैं। उनकी मूर्ति लेटी हुई है पूरी, आपने देखा है, दर्शन किया आपने, पूरा लेटा हुआ मूर्ति है भगवान, शयन किया हुआ। और जब उनको भोजन करने की इच्छा हो तो कहाँ आते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करने आते हैं। यहाँ पर काम केवल भोजन करने का, बस दिन भर आप जाइए मंदिर में देखेंगे आप कंटिन्यूसली रात भर, अभी तो कार्तिक का महीना है, बड़े श्रृंगार वेश करते हैं, रात भर भोजन भी चलते रहता है, दर्शन भी चलते रहता है, उनका मंदिर बंद नहीं होता है। रात का श्रृंगार खत्म होते होते ही मंगल आरती होती है और दिन का काम चालू हो जाता है। पुजारी भी सोते नहीं है, बीच बीच में आधा घंटा आराम कर लेते हैं। तो ये यहाँ का भोजन स्थल है उनका। और जब खेलने का दिल करता है तो कहाँ जाते हैं, श्री वृंदावन धाम में जाकर माधुर्य वात्सल्य और सख्य की क्रीड़ा करते हैं और सब भक्तों को दिव्य आनंद देते हैं। तो ऐसे भगवान हैं, हमारी विविधताओं की जो ज़रूरत है, हाँ द नीड ऑफ वैरायटी, ये भगवान अपनी विविधता से पूर्ण करते हैं। इसलिए हृदय की संतुष्टि अगर चाहिए तो भगवान के अलावा कोई विषय आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। बाकी सब आपको टेम्पररीली ऐसे अपनी इंद्रियों को हिलाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हृदय की संतुष्टि चाहिए तो केवल भगवान एक ही विषय है जो हृदय को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।